नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट किताबी कीड़ा और मैं हूं आपका दोस्त संजय गोरा। तो आज की कहानियां पढ़ने से पहले दो तीन चीज़ें मैं आपसे बताना चाहता था। पहला, अब क्योंकि आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आपका सुनने में और आध्यात्मिक कहानियों को, बातों को सुनने में रुचि है, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कवर की एक अच्छी मोबाइल ऐप है गीता सेवा नाम से। ये गीता प्रेस गोरखपुर की मोबाइल ऐप है और इस पर आप गीता प्रेस गोरखपुर की मैगजीन्स, बुक्स और इवन ऑडियो भी मुफ्त में सुन सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने क्योंकि डिस्कवर किया और मुझे विश्वास है कि आप सभी भी उससे लाभ उठाना चाहेंगे, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करूँ। गीता सेवा नाम से एक ऐप है मोबाइल की गीता प्रेस गोरखपुर की और उसमें उनकी सब मैगजीन्स, बुक्स और ऑडियो हैं, तो आप उसको सुनिएगा। अच्छा लगे तो मुझे व्हाट्सएप पर या ईमेल पर बताइएगा। मेरा ईमेल व्हाट्सएप शो नोट्स में है। और दो और बात की, एक मेरी लिखी किताबें, इंग्लिश में किताबें लिखी हुई हैं, कहानियों की हैं, कोटेशंस की हैं, मैनेजमेंट पे हैं, इमोशंस पे हैं, वो फ्लिपकार्ट, अमेजन सब जगह उपलब्ध हैं, तो यदि आप पढ़ना चाहें। और मेरे दो और पॉडकास्ट अभी हैं, एक इंग्लिश में पॉडकास्ट है लाइफ बुक नाम से और एक मैंने अभी नया शुरू किया है हिंदी की कहानियां बच्चों के लिए, चिल्ड्रन स्टोरीज इन हिंदी नाम से। हालांकि नाम मैं सोच रहा हूँ शायद कुछ चेंज करेंगे, पर एज ऑफ नाउ चिल्ड्रन स्टोरीज इन हिंदी नाम से एक कहानियों का, बच्चों की कहानियों का पॉडकास्ट भी शुरू किया है। तो आप उसको भी अपना प्यार देंगे, मेरी किताबों को और मेरे दूसरे पॉडकास्ट को, तो मुझे अच्छा लगेगा। आइए अब आप आज की कहानियां पढ़ते हैं। प्राचीन समय की बात है, कुरु वंश के देवापी और शांतनु में एक दूसरे के प्रति स्वार्थ त्याग की जो अनुभव भावना थी वह भारतीय इतिहास की एक विशेष उपलब्धि है। देवापी बड़े और शांतनु छोटे थे। पिता के स्वर्ग गमन के बाद राज्याभिषेक का प्रश्न उठने पर देवापी चिंतित हो उठे। वे चर्म रोगी थे, उनके शरीर पर छोटे छोटे श्वेत दाग थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि राज्य शांतनु को मिले, इसी में वे प्रजा का कल्याण समझते थे। महाराज, आपके निश्चय ने हमारे कार्यक्रम पर वज्रपात कर दिया है। बड़े भाई के रहते छोटे का राज्याभिषेक हो यह बात समीचीन नहीं है। प्रधानमंत्री के स्वर में स्वर मिलाकर प्रजा ने करबद्ध निवेदन किया। देवापी ने कहा कि आप लोग ठीक कहते हैं, पर आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं आपके कल्याण की बात में कुछ भी कमी ना रखूंगा। राजा का कार्य ही है कि वह सदा प्रजा का हित चिंतन करता रहे। तो इस तरह से उन्होंने छिपे तरीके से शांतनु का पक्ष लिया। प्रजा नतमस्तक हो गई और महाराज की जय बोला। शांतनु के राज्याभिषेक के बाद ही देवापी ने तप करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। शांतनु राज्य का काम संभालने लगे। महाराज शांतनु ने प्रधानमंत्री का ध्यान अपनी ओर खींचा कि प्रजा भूखों मर रही है, चारों ओर अकाल का नंगा नाच हो रहा है। महाराज देवापी के वन गमन के बाद 12 साल से इंद्र ने तो मौन ही धारण कर लिया है। जल वृष्टि ना होने से प्राणी मात्र उद्विग्न हो उठे हैं। पर यह तो भाग्य का फेर है महाराज, अनावृष्टि का दोष आप पर नहीं है और ना इसके लिए प्रजा ही उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री कुछ और कहना चाहते थे कि महाराज ने बीच में ही रोक दिया। हम प्रजा सहित महाराज देवापी को मनाने जाएंगे। राजा होने के वास्तविक अधिकारी तो वे ही हैं। महाराज शांतनु की चिंता दूर हो गई। प्रधानमंत्री ने सहमति प्रकट की। वास्तव में जंगल में मंगल हो रहा था। वन प्रांत नागरिकों की उपस्थिति में प्राणवाण था। भैया, अपराध क्षमा हो, हमारे दोषों की ओर ध्यान न दीजिए। सत्य का व्यतिक्रम करके मेरे राज्याभिषेक स्वीकार करने पर और आपके वन में आने पर सारा का सारा राज्य भयंकर अनावृष्टि का शिकार हो चला है। आप हमारी रक्षा कीजिए। शांतनु ने कुटी से बाहर निकलने पर देवापी के चरण पकड़ लिए। देवापी ने महाराज शांतनु को गले लगा लिया और कहा, भाई मैं तो चरम रोगी हूं, मेरी त्वचा दूषित है, मुझमें रोग के कारण राजकार्य की शक्ति नहीं थी, इसीलिए प्रजा के कल्याण की दृष्टि से मैंने वन का रास्ता लिया था, यह सत्य बात है। पर इस समय अनावृष्टि के निवारण के लिए तथा बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए मैं आपके वृष्टिकाम यज्ञ का पुरोहित बनूंगा। प्रजा उनकी जय जय बोलने लगी। तपस्वी देवापी राजधानी में लौट आए। उनके आगमन से चारों ओर आनंद छा गया। दोनों भाइयों के सत्य पालन से अनावृष्टि समाप्त हो गई। यज्ञ की काली काली धूम रेखाओं ने गगन को आच्छादित कर लिया। बृहस्पति प्रसन्न हो उठे। पर्जन्य की कृपा वृष्टि से नदी तालाब वृक्ष और खेतों के प्राण लौट आए। देवापी ने अपने सत्यव्रत में प्रजा की कल्याण साधना की। ये हमने पढ़ा ब्रह्म देवता से कहानी। आइए पढ़ते दूसरी कहानी। एक समय कुरु देश में ओलों की बड़ी वर्षा होने के कारण उगते हुए अन्न का नाश हो जाने से भयानक अकाल पड़ गया। अकाल से पीड़ित नर नारी अन्न के अभाव से देश छोड़कर भागने लगे। इसलिए चक्र के पुत्र उशस्ति ने भी अपनी धर्म पत्नी आटिकी की साथ लेकर देश छोड़ दिया और भटकते भटकते दोनों एक महावतों के ग्राम में पहुंचे। भूख के मारे उस समय उशस्ति मरणासन्न दशा को प्राप्त हो रहे थे। उन्होंने एक महावत को उबले हुए उड़द के दाने खाते देखा तो उसके पास जाकर कुछ उड़द देने को कहा। महावत ने कहा, मैं इस बर्तन में रखे हुए जो उड़द खा रहा हूं, इन जूठे उड़दों के सिवा मेरे पास और उड़द नहीं है, तब मैं तुम्हें कहां से दूं? महावत की बात सुनकर उशस्ति ने कहा, मुझे इनमें से ही कुछ दे दो। तब महावत ने उनमें से थोड़े से उड़द उशस्ति को दे दिए और जल सामने रखकर कहा कि लो इनको खाकर जल पी लो। इस पर उशस्ति ने कहा, भाई ये मैं जल पी लूंगा तो मुझे दूसरे की जूठन खाने का दोष लगेगा। महावत ने अचरज से पूछा, तो क्या तुमने जो उड़द मुझसे लिए हैं वो झूठे नहीं है? फिर झूठे जल ही में कौन सा दोष है? उशस्ति ने उत्तर दिया, भाई यदि मैं ये उड़द नहीं खाता तो मेरे प्राण नहीं रहते। यानी प्राण संकट में आपद धर्म समझकर ही मैं उड़द खा रहा हूं। अब जल तो मेरे इच्छा अनुसार मुझे दूसरी जगह भी मिल जाएगा। यदि उड़द की तरह मैं तुम्हारा झूठा जल भी पी लूं तब तो वह स्वेच्छाचार ही होगा, आपद धर्म नहीं रहेगा, इसलिए मैं तुम्हारा जल नहीं पीऊंगा। इतना कहकर उशस्ति ने कुछ उड़द खा लिए और शेष अपनी स्त्री को दे दिया। ब्राह्मणी को पहले ही कुछ खाने को मिल गया था, इसलिए पति के दिए हुए झूठे उड़द उसने खाए नहीं, अपने पास रख लिए। दूसरे दिन प्रातःकाल उशस्ति ने प्रातः कृत्य करने के बाद अपनी स्त्री से कहा, क्या करूं, मुझे जरा सा भी अन्न कहीं से खाने को मिल जाए तो मैं अपना निर्वाह होने लायक कुछ धन प्राप्त कर सकता हूं। यहां से समीप ही एक राजा यज्ञ कर रहा है, वह ऋत्विक के काम में मेरा भी वरण कर लेगा। यह सुनकर स्त्री ने कहा, मेरे पास कल के बचे हुए कुछ उड़द हैं, लीजिए इन्हें खाकर यज्ञ में शीघ्र चले जाइए। भूख से अशक्त हुए उशस्ति ने उड़द खा लिए और कुछ स्वस्थ होकर वे राजा के यज्ञ में चले गए। वहां जाकर वे आस्ताओं में यानी स्तुति के स्थान में स्तुति करने वाले उद्गाताओं के पास जाकर बैठ गए और स्तुति करने वालों की भूल देखकर उनसे बोले, हे प्रस्तुता, आप जिन देवता की स्तुति करते हैं वे देव कौन हैं? आप यदि अधिष्ठाता को जाने बिना उनकी स्तुति करेंगे तो याद रखिए आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा। इसी प्रकार उद्गाता से कहा कि हे उद्गीत की प्रस्तुति करने वाले, यदि आप उद्गीत भाग के देवता को जाने बिना उनका उद्गान करेंगे तो आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा। तदनंतर उन्होंने प्रतिहार का गान करने वाले की ओर भी बढ़कर कहा कि हे प्रतिहार का गान करने वाले प्रतिहर्ता, यदि आप देवता को बिना जाने उसका प्रतिहार करेंगे तो आपका मस्तक नीचे गिर जाएगा। यह सुनकर स्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता आदि सब ऋत्विजगण मस्तक के गिरने के डर से अपने अपने कर्म को छोड़कर चुप होकर बैठ गए। राजा ने अपने ऋत्विजों की यह दशा देखकर कहा कि हे भगवान, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। उशस्ती ने कहा, राजन, मैं चक्र का पुत्र उशस्ती हूं। राजा ने कहा, ओहो भगवान, उशस्ती आप ही हैं। मैंने आपके बहुत से गुण सुने हैं, इसलिए मैंने ऋत्विज के काम के लिए आपकी बहुत खोज की थी, परंतु आपके ना मिलने पर मुझे दूसरे ऋत्विज वरण करने पड़े। अब मेरे सौभाग्य से आप पधारे तो हैं हे भगवान, ऋत्विज संबंधी समस्त कर्म आप ही करने की कृपा कीजिए। उशस्ती ने कहा, बहुत अच्छा, परंतु इन ऋत्विजों को हटाना नहीं, मेरी आज्ञा अनुसार ये ऋत्विजगण अपना अपना कर्म करें और दक्षिणा भी जो इन्हें दी जाए उतनी ही मुझे देना। यानी ना तो मैं इन लोगों को निकालना चाहता हूं और ना दक्षिणा में अधिक धन लेकर इनका अपमान करना चाहता हूं। मेरी देखरेख में ये सब कर्म करते रहेंगे। तदनंतर प्रस्तोता, उद्धाता आदि समस्त ऋत्विजों ने उशस्ती के पास जाकर विनयपूर्वक उनसे पूछ पूछ कर सब बातें जान ली और उशस्ती ने उन लोगों को सब समझाकर उनके द्वारा राजा का यज्ञ भली भांति पूर्ण करवाया। ये कहानी हमने पढ़ी छांदोग्य उपनिषद की। आपने इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मेरी यानी संजय गोरा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे पॉडकास्ट किताबी कीड़ा। अगली मुलाकात तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।